आपने बाबा हमें कितने हसी तकदीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तकबीर दी।
ओम शांति। आप आदरणीय उर्मिला बहन जी, ज्ञानामृत में हमेशा बहुत अच्छे अच्छे लेख आते हैं, तो आपने देखा होगा कि उन लेख में समय अनुसार जो वर्तमान समय चल रहा है उस पर बहुत सुंदर लेख लिखती हैं आप आदरणीय उर्मिला बहन जी। 22 वर्षों से आप बाबा के बेहद यज्ञ में समर्पित और 8 वर्षों से शांतिवन परिसर में ज्ञानामृत विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप ज्ञानामृत मासिक पत्रिका की सह संपादिका हैं, त्रैमासिक हरियाली पत्रिका की भी सह संपादिका हैं। आदरणीय उर्मिला बहन जी,
ओम शांति। आज का हमारा विषय बहुत सुंदर है। विषय के 3 पार्ट हैं। पहला है बैलेंस, हिंदी में कहते हैं बैलेंस माना संतुलन। और बाबा मुरली में कहते हैं कि जो बैलेंस के साथ चलता है उसको जीवन में ब्लेसिंग मिलती है। ब्लेसिंग माना दुआ मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। और जब हमारे जीवन में दुआएं और आशीर्वाद एकत्रित हो जाती हैं तो जीवन ब्लिसफुल बन जाता है। ब्लिसफुल माना आनंदमय। तो आनंदमय जीवन की यात्रा बैलेंस से शुरू होती है, संतुलन से शुरू होती है। संतुलन भी विरोधी बातों में, जैसे बाबा कहती हैं कि बच्चे शरीर और आत्मा दो चीजें हैं, तो शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों में संतुलन चाहिए। यदि हम शरीर निर्वाह की तरफ पलड़े को झुका देते हैं और आत्म निर्वाह हमें ढीले हो जाते हैं तो परिणाम क्या निकलेगा? हमें लोगों की दुआएं भी नहीं मिलेंगी और जीवन आनंददायक नहीं बनेगा। और यदि आत्मा की तरफ इतना ध्यान दिया कि शरीर की आवश्यकताओं को भूल गए तो भी संतुलन बिगड़ जाएगा। दुनिया में हमें 2 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो लोग हैं जिनका पलड़ा शरीर की तरफ झुका हुआ मिलेगा आपको, शरीर निर्वाह, जीवन निर्वाह, और उसके लिए वो समय का लगभग 90% लगा देते हैं। धन कमाने में, आवश्यक चीजों को अर्न करने में, संबंधों को निभाने में। जब उनको कहा जाता है कि भाई थोड़ा सा समय तो निकालो भगवान की याद के लिए, तो कहते हैं जिस समय नहीं है। और दूसरा एक ऐसा समूह भी है जो शरीर को नेग्लेक्ट करता है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके बाल उलझे हुए हैं, नहाए बहुत बहुत दिन गुजर जाते हैं, कफनी टांगी हुई है, जगह जगह मांग रही हैं, कमाते भी नहीं है, नहाते भी नहीं है, ठीक से रहते भी नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं ये संसार भी नश्वर, शरीर भी नश्वर, क्या करेंगे इसका श्रृंगार करके, नहा के क्या करेंगे, कमा के काय को बंधनों में फंसना। तो वो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनसे भी एक तरह से निवृत्त रहते हैं, पूरी तरह से सोचते हैं ना कर्म करें और ना ही संसार में लिपायमान हूं, तो उनके जीवन में भी सच्चा सुख और सच्ची शांति नहीं होती है। बाबा ने हम बच्चों को बीच का जीवन सिखाया। बाबा ने कहा शरीर की आवश्यकताएं अवश्य पूर्ण करो, लेकिन टू मच मत उलझो। जैसे कई बार हम सुनते हैं बाबा से, कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा धंधे में बड़ी झूठ बोलनी पड़ती है तो क्या करें, क्या धंधा छोड़ दें? तो साकार मुरली में हम सुनेंगे बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपके पास इतना धन है कि आपकी दाल रोटी चल सकती है तो बेशक आप धंधा छोड़ दो, इकट्ठे किए हुए धन से दाल रोटी चलाओ और बचे हुए समय में बाबा की सेवा करो। इसका मतलब बाबा ये भी नहीं कहता कि मांगो, ये भी नहीं कहता कि भूखे मरो, लेकिन अगर है तो थोड़े खर्चे में जीवन निर्वाह चला करके बाबा की सेवा में लग जाओ। दूसरी तरफ जिन भाई बहनों को कमाना अनिवार्य है उनको भी बाबा कहते हैं बच्चे इतना ही कमाओ जिससे आपकी आवश्यकताएं पूरी हो। आजकल हम देखते हैं कि लोग एक काम करते हैं, उस काम से 5 बजे छूटते हैं, 6 बजे दूसरे धंधे में चले जाते हैं, वहां से 9 बजे आते हैं, फिर 9 बजे कोई तीसरा धंधा छोटा मोटा शुरू कर देते हैं, उससे 11 बजे निपटते हैं, फिर जैसे तैसे बेचारे थोड़ा बहुत शरीर को आराम देते हैं, सुबह उठ के फिर उसी भाग दौड़ में लग जाते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि भाई आप इतना काम क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो? तो कहते हैं पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन पेट में डालने के लिए तो फुर्सत ही नहीं मिली बेचारे को, आराम से बैठ के तो वो खा ही नहीं सकता। और अगर हम पापी पेट की भी बात करते हैं तो पेट की रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है। कितना चाहिए पेट को? क्या इतना चाहिए कि हमें 24 घंटे में 2 और 3 धंधे करने पड़े? वास्तव में ये पेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये पेटियों की रिक्वायरमेंट होती है। और इसलिए हमारा सारा का सारा पलड़ा स्थूल धन की तरफ, भौतिक चीजों की तरफ झुक जाता है। आत्मा, आत्मा का निर्वाह है, आत्मा की शांति स्थिरता, उन सब चीजों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर अंत में पछताते हैं, कहते हैं देखो सारा जीवन हमने कितना किया, अरे भाई कभी बैठ के खाया नहीं, भगवान का नाम लिया नहीं, सब कुछ तो इन बच्चों के लिए किया और अब ये बच्चे हमको पूछते भी नहीं। देखो बच्चे कैसे निकले, कारण क्या हुआ? बच्चों ने तो नहीं कहा था कि आप बैठो नहीं, भगवान का नाम मत लो, लेकिन हमारी अपनी इम्बैलेंस की आदत के कारण ये हुआ, जिसका हमें बाद में पश्चाताप भोगना पड़ा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को जो दिनचर्या बना करके दी, 24 घंटे को बाबा ने 8-8 घंटे के 3 हिस्सों में बांटा। 8 घंटे नींद करो, 8 घंटे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, और 8 घंटे में बाबा की सेवा करो। अगर हम बाबा द्वारा बनाई गई दिनचर्या के अनुसार चलते हैं तो जीवन में संतुलन रहता है और बहुत खुशी रहती है, ऐसे लगता है जैसे हम उड़ रहे हैं, हमारे सब काम हो जाते हैं, सरलता से हो जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ दिन पहले एक मुरली आई थी जिसमें बाबा ने घर परिवार में रहने वाले भाई बहनों को एक श्रीमत दी थी। बाबा ने कहा था कि बच्चे पूछते हैं कि बाबा प्रवृत्ति में रहते हुए बहुत सारी बातें सामने आती हैं, बहुत निर्णय लेने पड़ते हैं, कई बातों के उत्तर देने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? तो बाबा ने कहा था बच्चे बीच की स्थिति में खड़े होकर के निर्णय लो। बीच माना संगम योग, संगम युग पर खड़े हो जाओ, ना तो पलड़े को इधर झुकाओ ना इधर झुकाओ। मैं संगम योगी ब्राह्मण हूं, भगवान मुझे लेने आया है और मुझे ज्ञान गुणों का श्रृंगार करके भगवान के साथ जाना है। सारे ज्ञान का सार यही है ना, आप घर जाना है, वापस लौटना है, रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। इन बातों को स्मृति में रख करके आप घर परिवार के लोक व्यवहार के कार्यों का डिसीजन लो तो ठीक लिया जाएगा। बाबा ने कहा था बीज की स्थिति माना बीज रूप अवस्था, बीज की स्थिति, और बीज बड़ा शक्तिशाली होता है। तो बीज की स्थिति में टिक करके हम कर्म करेंगे तो स्थिति बड़ी शक्तिशाली रहेगी। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं, लौकिक कार्यों में कई बार हमें लेन देन करना पड़ता है, किसी को गिफ्ट देनी पड़ती है, किसी को कुछ धन की मदद करनी पड़ती है रिश्तेदारी में, या कुछ हमारे रस्म रिवाज ऐसे ही हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं। अब अगर हम केवल लोगों को देख करके डिसीजन लेंगे तो क्या सोचेंगे, भाई अच्छे से अच्छा करूं, उस आदमी ने जैसा किया था ना इस मौके पर, मैं उससे भी बढ़िया करूं, मैं ऐसा करूं जो समाज के लोग मेरी वाह वाह करें, उस चीज को देख करके लोग कहें वाह इसने बहुत बढ़िया किया। जैसे कोई शादी करनी है या कोई किसी का भात देना है, कुछ भी, एक तो ये दृष्टिकोण हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि भगवान ने कहा है लेन देन करने से हिसाब किताब जुटते हैं, इसलिए मैं तो करूंगा ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है। कोई नाराज होता है तो होता रहे, मेरा क्या जाता है, मैं नहीं करूंगा, मैं तो ब्रह्मा कुमार बन गया, अब मेरे लिए थोड़े ये सारी जिम्मेवारियां हैं। अब ये दोनों ही गलत। बाबा ने कहा बीच की स्थिति अपनाओ, बीच माना मुझे करना है, ताकि कोई ये ना कहे कि ये तो ज्ञान में चल करके देखो कैसे हो गए, नास्तिक हो गए, कोई रिश्ता ही नहीं निभाते, कोई ड्यूटी ही नहीं निभाते, ये भी कोई ज्ञान हुआ, इसलिए मुझे करना जरूर है ताकि कोई बाबा पे उंगली ना उठाए, लेकिन मुझे समाज के साथ होड़ भी नहीं करनी है, मुझे ऐसा करना है। कहते हैं जैसी आपकी हैसियत है, जिससे मेरा मन शांत रहे, मान शान की भावना भी मेरे अंदर ना आए और मेरा काम भी निकल जाए, और जो मैं काम करूं उससे जिसके निमित्त कर रहा हूं उसको सुख भी मिले। तो बीच की स्थिति में खड़े होके बाबा को याद करके, बाबा की श्रीमत को ध्यान में रख करके हम कर्म करते हैं। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने, जब वो शिष्य बना तो खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और बेचारा बिल्कुल सूख गया, माना मैं साधना बहुत करूं साधना बहुत करूं, ऐसे उसको लगन हुई। तो महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि ये तो साधना की अति में जा रहा है, तो उसको बुलाया और एक वीणा, वीणा बुलाई, वीणा बजाने में वो बहुत होशियार था, कहा वीणा को साथ लेकर के मेरे से मिलने आना, जिसको बजाते हैं एक वाद्य। तो बुद्ध ने क्या किया, उसके तार बिल्कुल खींच दिए, एकदम टाइट कर दिए। तो वो कहता है भंते ये तार तो इतने टाइट हो गए कि जब वीणा बजाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तो बुद्ध ने अगले ही अक्षण उनको बिल्कुल ढीला कर दिया, लूज। फिर उसने टोका, भंते ये तो इतने ढीले हो गए कि ये तो बजेगी ही नहीं, सुर निकलेंगे ही नहीं। तो बुद्ध ने कहा जैसे वीणा के तार बीच की स्थिति में होने चाहिए, ऐसे ही जीवन से भी सुंदर सुर निकालना है, जीवन को भी अगर सुरमय बनाना है तो बीच की स्थिति में रहो, ना तो ऐसी साधना करो कि शरीर ही बीमार हो जाए और ना ऐसे ढीले हो जाओ कि साधना में विघ्न पड़ने लगे, साधना में ही ना लूज हो जाओ, बीच की स्थिति में रहो। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कर्मयोग सिखाया। दुनिया में आपने देखा होगा जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। हम भी कई बार ईश्वरीय ज्ञान देते हैं सभाओं में, और कई आधुनिक पढ़े लिखे लोग सभाओं में बैठे होते हैं, मंच पे भी बैठे होते हैं, और जैसे हम कहते हैं भाई कर्म योगी बनो, तो वो लोग कहते हैं बहन जी हम तो इतना ही जानते हैं कि हमको अपना कर्म ठीक रीति से करना चाहिए। भाई मैं कलेक्टर हूं तो मेरा काम है मैं कलेक्टर का काम ठीक से करूं, मैं डॉक्टर हूं तो मेरा काम है मैं इंजेक्शन दवाई ठीक से दूं, मैं वकील हूं तो मेरा काम है भाई मैं अपने मुवक्किल की पूरी बात ठीक से सुनूं फैसला करूं। वो कहते हैं हम तो बस यही समझते हैं यही पूजा है, अलग से भगवान का नाम लेने की आश्रम पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम अपना धंधा, बिजनेसमैन कहता है भाई मैं अपना धंधा ठीक से करूं मेरी वही पूजा, इसी को लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। लेकिन वास्तव में पूजा जब आदमी करता है तो उसके मन में शांति रहती है, लेकिन क्या सांसारिक कर्म करते हुए लोग शांत हैं? कलेक्टर से पूछो कि तू अपनी सीट पे बैठ के कितना शांत रहता है, डॉक्टर से पूछो दवाई इंजेक्शन देते तुझे कितनी शांति मिलती है, वकील से पूछो झगड़ों का निपटारा करने में तेरे को कितनी चैन की नींद आती, नहीं है ना इन सबको नींद, इनको या किसी भी अन्य व्यक्ति को, क्योंकि आज के जमाने में अंग्रेजी में कहते हैं वर्क इज नॉट वर्शिप बट वर्क इज वॉरशिप, कर्म भी युद्ध की तरह से हो गया है। बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है, एक ऑफिस में कितने लोग होते हैं, टीम वर्क करना पड़ता है, एक व्यक्ति के कार्य से दूसरे को तनाव होता है, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, सभी तनावग्रस्त हो जाते हैं। कर्म करते हुए व्यक्ति चिड़चिड़ाता है, क्रोध करता है, आलस करता है, आज की बात कल पर टाल देता है, और कई बार कर्म करते हुए कर्म का मूल्य भी चाहता है। ड्यूटी करेगा लेकिन ड्यूटी का अलग से मूल्य चाहता है, कई बार कर्म को टालने की कोशिश करता है, बहानेबाजी करता है, कर्म करते हुए स्वार्थी बन जाता है, दिखावे से कर्म करता है, कर्म में पक्षपात भी करता है, कर्म करते न्यायप्रिय नहीं रह पाता है। तो अगर कर्म में ये सारी चीजें हैं तो कर्म पूजा हुआ क्या? वो तो बंधन बन गया। इसलिए बाबा कहते हैं बिना योग के जो कर्म किया जाता है वो कर्म बंधन है, और जो योग में रह करके कर्म किया जाता है वो हमें जीवन मुक्ति प्रदान करता है, उसमें हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। इसलिए कर्म पूजा नहीं है, कर्म योग पूजा है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए परमात्मा को याद करता है वो कर्म में आने वाली सभी नेगेटिविटीज से बच जाता है, भले कुछ भी करे, उसका धंधा किसी भी प्रकार का हो, और धंधा भी अच्छा स्वच्छ धंधा करेगा, खराब धंधा थोड़े करेगा। दूसरी तरफ जैसे हमने पहले बात की, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कर्म करते हैं तो हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं इसलिए हम कर्म करेंगे ही नहीं, कर्म नहीं करेंगे लेकिन खाएंगे तो अवश्य, कर्म का तो त्याग कर देते हैं लेकिन खाने पीने का त्याग तो नहीं होता, फिर दूसरों के कमाए हुए को खाते हैं वो तो और भी बड़ा कर्म बंधन हो गया। इसलिए कर्म करने से मैं कर्म बंधन में बंध जाऊंगा इसलिए मैं कर्म करना ही छोड़ दूं, ये भी ठीक नहीं है। बाबा ने दोनों के बीच की स्थिति क्या बताई, कर्म कीजिए खूब कीजिए इस शरीर रूपी गाड़ी से खूब कमाई कीजिए, जमा का खाता कीजिए, लेकिन ईश्वर की याद में कीजिए, मन मना भव होके कर्म कीजिए। प्रभु स्मृति में कर्म करेंगे तो बोझ भी नहीं चढ़ेगा, और कर्म के कारण जो मन में विकृतियां आती हैं वो भी नहीं आएंगी, ये भी बैलेंस। इसी तरह से बाबा हम बच्चों को सिखाती हैं कि प्रेम में और नियम में संतुलन रखो। दुनिया में लोग कहते हैं जहां प्रेम होता है वहां नियम की क्या जरूरत है, लेकिन बाबा ने कहा प्रेम के साथ नेम हो तभी प्रेम शोभता है। मां एक बच्चे की पालना कैसे करे, प्रेम और शक्ति दोनों को साथ लेके करे। अगर वो केवल प्रेम ही करती है बच्चे से, थोड़ा शक्ति रूप नहीं बनती तो क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। आजकल बच्चे बहुत बिगड़ती क्योंकि माताएं बेचारी मोहवश हो जाती हैं, मोह का ऐसा पर्दा आता है कि वो गलत को गलत नहीं कह सकती है, पता ही नहीं पड़ता कि ये गलत है कि ठीक है, और बच्चा मन चाही बातें मनवा लेता है, जो मर्जी मनवा लेता है। और कई फिर ऐसे होते हैं एकदम शक्ति रूप, बच्चे की जबानी बंद हो जाती है, ठीक बात भी बेचारा बोल नहीं पाता, दोनों ही गलत है। बाबा हम बच्चों की पालना कैसे करता है, कितना प्रेम हम बच्चों से करता है, लेकिन साथ साथ नियम भी सिखाता। सुबह उठने का नियम सिखाया पर प्यार प्यार में, डंडे से नहीं, रोज मुरली का नियम सिखाया लेकिन प्यार प्यार में, शुद्ध अन्न का नियम सिखाया लेकिन प्यार प्यार में, डंडे से नहीं। सेवा करो, कठिन से कठिन सेवा भी बच्चे प्यार प्यार में कर लेते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बाबा के प्यार में पार कर लेते हैं। तो जीवन में इन दोनों विरोधी लगने वाले गुणों का संतुलन चाहिए। इसी तरह से बाबा कहते हैं रमणीकता और गंभीरता में संतुलन हो। रमणीकता माना मिलनसार, खुश मिजाज, पॉजिटिव, समय अनुसार ढलने वाला, सब जगह एडजस्ट कर लेने वाला, उसको कहेंगे ना रमणीक। लेकिन गंभीर का अर्थ क्या है, बिना आवश्यकता के जो ना बोले ना हंसे, जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग न करे, मौके के अनुसार बोले, जितना चाहिए उतना बोले, उसको कहते हैं गंभीरता। तो मुझे किस समय कितने शब्दों का प्रयोग करना है और किस समय कितना मुस्कुराना है, मिलनसार बनना है, कितना मुझे किसके साथ एडजस्ट करना है, दोनों का संतुलन चाहिए। ऐसा ना हो कि जहां हमको एडजस्ट करना हो वहां हम न्यारे होने की कोशिश करें, और जहां न्यारा होना चाहिए वहां हम बहुत घुल मिल जाएं, अपने स्वरूप को ही भूल जाएं, स्वमान से ही नीचे आ जाएं, इतने घुल मिल जाएं कि अपनी दिनचर्या और अपने नियमों का ही उल्लंघन कर दें, वो भी नहीं चाहिए। वास्तव में बाबा कहते हैं बच्चे न्यारे बनने का अर्थ क्या है, लोगों से न्यारा नहीं होना, लोगों से दूर रहने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन देह से न्यारा होने की कोशिश करनी। जो देह से न्यारा है वही वास्तव में एकांत प्रिय है, वही तपस्वी है, वही साधक है। हम वैसे अकेले रहें लेकिन देह में आसक्ति रहे तो उसको तो एकांतवासी नहीं कहेंगे, एकांत प्रिय नहीं कहेंगे, न्यारा नहीं कहेंगे। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि मैं तुम बच्चों को कर्म कूटने से बचाता हूं, तो ये कर्म कूटने का अर्थ क्या है? देह अभिमान में हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों को करते समय भी दुख और कर्मों का परिणाम भी दुख, इसको कहते हैं कर्म कूटना। जैसे कोई बीज बोए तो भी वो बीज भी चुभे और बीज का फल निकले वो भी कड़वा निकले, चुभने वाला निकले, इसको कहते हैं कर्म कूटना। लेकिन बाबा हमें कैसे कर्म सिखाते हैं? जिनको हम कहते हैं कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त, शरीर में रहते हुए भी शरीर के बंधन से मुक्त, संसार में रहते हुए भी संसार की आसक्तियों से मुक्त, संबंधों के बीच में रहते हुए भी संबंधों की मोह ममता से मुक्त, ये कला है ऐसे कर्म, और वो बाबा हमको सिखाते हैं। तो जब हम इस तरह से कर्म करते हैं तो दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलते हैं बाबा के भी और अनेक आत्माओं के भी। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। एक बार यहां किसी कार्यक्रम में बहुत सारी बहनें आई थी तो एक बहन ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया कि मेरा ज्वाइंट फैमिली है और मेरा एक 5 साल का बच्चा है, और क्योंकि बच्चा घर में एक ही है तो वो सबका प्रिय भी है। कुछ दिनों के बाद बच्चे की चाची घर में आ गई। अब सब लोग बच्चे से प्यार करते थे, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, ईर्ष्या समझ लीजिए, ईर्ष्या हुई। तो एक दिन मैं कहीं बाहर गई थी और बच्चे ने जाकर के कोई खाने की चीज मांगी। हम तो गांव में रहते हैं, उसने सुनाया चूल्हा जलाते हैं, तो बच्चे की चाची चूल्हा जला रही थी। बच्चे ने कहा मुझे खाने के लिए वो चीज दे दो, वो अपने काम में व्यस्त थी, ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने दोबारा मांगी, बच्चा तो बच्चा होता है, तिबारा मांगी। उसको थोड़ा रोष आ गया और वो चूल्हे की जो लकड़ी हाथ में थी ना, उसने उसको ऐसे किया कि तेरी माँ आएगी तो देगी, जा, और वो लकड़ी उसको लग गई। लग गई, थोड़ा सा जल गया, बच्चा रोने लगा। मैं बाहर से आई, बच्चा रो रहा था, और वो उसने कर तो दिया रोष में ये कर्म, लेकिन बेचारी पीली पड़ गई। अब क्या होगा, घर के लोगों को पता पड़ेगा, बच्चे को मारा। तो बच्चा दौड़ा दौड़ा आया और उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ, 5 साल का बच्चा तो बता देता है। तो मैंने जल्दी में उसको कुछ लगाया, आलू काट करके वो उसको लगा दिया ताकि थोड़ी ठंडक मिले। और मैंने उसको कहा कोई बात नहीं है, चाची ने मारा नहीं है, लेकिन वो भूल से उसका हाथ ऐसे हो गया, चाची तो तेरे को बहुत प्यार करती है, जा वापस जा चाची के पास, अब तेरे को बहुत प्यार करेगी। तो मैंने बच्चे को मना करके फिर भेज दिया, देख जा चाची तेरे को लड्डू देगी। तो चाची सुन रही थी, उसने देखा अरे ये क्या हो गया, मैं तो डर रही थी और ये तो मेरी ये बड़ी बहन तो बहुत अच्छी निकली, देखो इसने टूटता हुआ घर बचा लिया, आज तो पता नहीं मेरा क्या होता, घर के और बड़ों को पता पड़ता। तो उसने फटाफट डब्बे से लड्डू निकाल करके बच्चे के हाथ पे रख दिया। इतनी देर में और घर के लोग खाना खाने आ गए, तो बच्चा बहुत लाडला था, सबने पूछा कि ये क्या हो गया, ये रो क्यों रहा है, इसके पांव को ये पट्टी क्यों बंधी है। तो उसकी माँ ने तुरंत बोला कि ये चूल्हे के आसपास चक्कर काट रहा था तो ऐसी एक लापरवाही से लकड़ी लग गई, किसी को नहीं बताया उसने, बात आई गई हो गई। सब लोग खाना खा के चले गए, लेकिन उसके अंदर में बड़ा विचार चला कि इतनी बड़ी घटना हो गई और देखो इसने कैसे संभाली। तो वो बेचारी आई, उससे माफी मांगी, और अब सचमुच बच्चा जिससे उसको कभी कभी ईर्ष्या होती थी उसका बड़ा प्रिय बन गया। इस घटना के बाद उसका दिल का प्यार बच्चे के साथ जुट गया। लेकिन ये हुआ कैसे? जब उसकी मां ने सहन कर लिया, समा लिया, माफ कर दिया। अगर मां ये काम न करती तो उस दिन क्या होता? और सदा के लिए एक छोटी सी बात बोलचाल बंद होने का कारण बन जाती, जीवन भर के लिए। तो बाबा हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? सहन करो, समाओ, क्षमा कर दो, भूल जाओ। वास्तव में दुआएं और आशीर्वाद तब मिलते हैं जब हम किसी को क्षमा करते हैं। बिना क्षमा किए मिल नहीं सकते। बिना क्षमा किए तो बदले की भावना रह जाती है। पहले व्यक्ति गलत काम करेगा और फिर जब उसे सजा मिलेगी तो बदले की भावना जागेगी। अच्छा तो तूने मुझे सजा दी, मैं इससे दुगना गलत करूंगा। ये प्रतिशोध जागता है। बच्चे को भी हम मार पीट के सुधार पाते हैं क्या? जब बच्चे को नहीं सुधार पाते तो बड़ों को कैसे सुधार लेंगे? लेकिन जो व्यक्ति दिल से माफ कर देता है, दिल से माफ करने का मतलब क्या है? चित्त से उस बात को निकाल देता है। यदि हम ऊपर से कहते हैं कोई बात नहीं भाई तूने गलती की, अच्छा कोई बात नहीं है, गलतियां सबसे हो जाती हैं, ऊपर से तो हमने कह दिया लेकिन भीतर में संकल्प चल रहे हैं ये आदमी तो अच्छा नहीं है, देखो इसने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो ये वाइब्रेशन उसको पहुंचते रहते हैं और उसको अंदर में लगता है कि नहीं इसने मुझे माफ नहीं किया, और दोनों की नजरें मिलती नहीं, आमना सामना होता है तो मिलन होता नहीं दिलों का, क्योंकि भीतर में गांठ पड़ी हुई है ना। लेकिन जो सचमुच बात को भुला देता है, जिसको बाबा ने कहा बिंदु लगा दो, तो जब हम बिंदु लगा देते हैं ना तब समझो हमने क्षमा कर दिया। वो पूछेगा भी ना कि कल मैंने ऐसे किया था, तो हम क्या कहेंगे? अरे कल की बात आज तक थोड़ी याद रहती है, कल तो कल गया ना, आज आज की बात करो। तो वो समझ जाएगा हाँ ये भूल गया है, इसने सचमुच बात को भूला, वो भी भूल जाएगा। किसी ने बहुत अच्छी बात एक बार सुनाई थी कि देखो एक कैदी को सजा मिलती है, सजा कौन देता है? या तो जज देता है या फिर दोनों तरफ के वकील केस लड़ते हैं और उसका वकील कमजोर पड़ जाता है, उसको सजा हो जाती है। सजा की घोषणा जज करता है, उसके बाद जेल में ले जाने वाले पुलिस वाले होते हैं, और जब वो जेल में चला जाता है तो उसकी रखवाली करने वाले भी, वो जो उसकी कोठरी होती है उसके आगे रक्षक होते हैं, निरीक्षक होते हैं, जो भी होती है। लेकिन कैदी से पूछो कि भाई तेरे को सजा किसने दी, तो वो कहेगा कि ये न्यायाधीश बड़ा खराब है, इसने मुझे सजा दी, ये वकील बड़ा खराब है, इसने मुझे सजा दी, ये पुलिस वाले बड़े खराब है, इन्होंने मुझे अंदर बंद कर दिया। ऐसे बोलेगा क्या? ऐसे कभी नहीं बोलेगा वो। उसको अंदर में ये स्मृति है कि ये तो केवल निमित्त बने हैं, लेकिन मैं जो सजा भोग रहा हूं ना ये मेरे कर्मों का परिणाम है। मैंने कर्म किए थे और उसको वो कर्म भी याद आ जाता है, भाई मैंने हत्या की उसका फल है ये। ये जज भी निर्दोष है, वकील भी निर्दोष है, पुलिस वाले भी निर्दोष हैं, जेलर भी निर्दोष है, लेकिन असली कारण है मैंने जो हत्या की, मैंने जो चोरी की, मैंने जो किसी के साथ अन्याय किया, वो असली कारण है। तो जेल में उसको कौन याद आता है? जिसके साथ उसने कर्म किया होगा, क्योंकि एक ही जन्म की बात है ना, तो वो व्यक्ति याद रहता है। ऐसे ही हमारे साथ भी कुछ हुआ। तो वास्तव में दोषी कौन है? हमको पैसे का नुकसान हो गया। अब ऐसे तो लगेगा कि ये नौकर ठीक से नहीं दुकान में काम नहीं करता, या फलाने आदमी ने हमको जो चीज दी वो नकली दे दी। कई तरह की बातें आती है ना सामने, जिससे भाई हमको इतना लॉस हो गया, लाख, दो लाख, पांच लाख, दस लाख का लॉस हो गया। लेकिन वास्तव में वो दोनों लोग तो निमित्त बने, लगता है ऐसे। असली कारण तो ये है कि हमारा कोई कर्ज था जो चुकतू हो गया। लेकिन क्योंकि कर्मों का हिसाब एक जन्म का तो होता नहीं है, वो तो कई जन्मों का होता है, और हम पिछले जन्म की बातें भूल जाते हैं, इस जन्म में भी कई बातें करके भूल जाते हैं। इसलिए जो निमित्त बनता है उसको हम दोषी समझते रहते हैं। ये दोषी है, देखो ये मेरे साथ अन्याय करता है, ये न्याय नहीं करता, ये मेरे से मीठा नहीं बोलता है, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देता, ये आदमी मेरी टांग पीछे खींचता है, ये मुझे भला बुरा कहता रहता है, ये मेरे पुरुषार्थ में बाधा डालता है। ऐसे हमको सामने वाला आदमी दिखाई देता है ना, लेकिन वास्तव में तो हमारे अपने कर्म ही निमित्त हैं, पर वो गुप्त हैं, हमको याद नहीं। अब मान लीजिए हम ये समझ लें कि मेरा ही कोई कर्म मेरे सामने आया जिसके कारण मुझे ये नुकसान हुआ, तो हम निमित्त बनने वाले आदमी को दिल से माफ करेंगे, भाई तेरी गलती नहीं है, मेरा अपना कर्म का हिसाब है। लेकिन इस बात को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो जो निमित्त बनेगा उसको बददुआएं देते रहेंगे, उसके साथ दुश्मनी ले लेंगे। पहले वाली दुश्मनी तो अभी खत्म नहीं हुई थी और एक के साथ और नई दुश्मनी ले ली, तो हमारा कर्म का हिसाब अधिक उलझता चला जाएगा। अगर हम उसको मैनेज करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो तरीका बाबा ने क्या सिखाया कि जो निमित्त सामने दिखाई देता है उसको माफ कर दो, भूल जाओ, उसको दोषी मत मानो। बहुत गहरी बात है और बहुत अंतर्मुखी होकर के अपने आप को एनालाइज और रियलाइज करने की बात है, अपने आप को बदलने की बात है। अगर हम ऐसा कर सकें तो फिर तो किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए भी मन में कोई नकारात्मक भावना आएगी ही नहीं। जैसे रामायण में दिखाते हैं कि जब लक्ष्मण ने कहा राम भैया राम भैया, आपको मालूम पड़ा कि कई ने आपको वनवास दे दिया, तो राम ने कहा लक्ष्मण तूने माता केकई को केकई कहना कब से शुरू कर दिया? तो आगे लिखा है कि जब सुख का समय होता है उस समय मर्यादित शब्द बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुख की घड़ी में शब्दों की मर्यादा बनाए रखना, इसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसके बाद भी कई ऐसे अवसर आए जब उनको ये कहा गया कि देखो कितना बढ़िया अवसर था आपका, राजतिलक होने में कुछ ही घड़ियां तो बाकी थी, लेकिन मंथरा ने और केकई ने देखो कि क्या कर दिया, एकदम सारे परिवार को जैसे शोक के समंदर में डाल दिया। तब भी राम ने क्या कहा, केकई तो निर्मल प्रेम का झरना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई अनचाहा तूफान आता है, आंधी होती है और झरने का निर्मल जल भी गंदला हो जाता है। इसमें झरने का दोष नहीं है, दोष उस आंधी का और तूफान का है, और वो आंधी और तूफान हमारे प्रारब्ध के कारण आई है। हमारा कोई पूर्व का ऐसा संचित कर्म है जिसके कारण वो आंधी अभी आनी थी। तो राम ने क्या कहा कि मेरे ही किसी कर्म का फल है ये, जो ऐसे मौके पर वो फल प्रकट हो गया, कर्म प्रकट हो गया और दोषी बिचारी केकई बन गई। ये तो बिल्कुल निर्दोष है। तो जब राम को लौटाने के लिए भरत गया और भरत के पीछे सारी माताएं भी गई, तो केकई ने सीता को कहा कि राम को कहो मुझे माफ कर दे, मेरा हृदय पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। तो सीता ने कहा, माता माफ तो उसको किया जाता है जो दोषी हो, राम तो आपको दोषी मानते ही नहीं है, आप दोषी कहां हैं? तो केकई ने कहा, अगर राम मुझे दोषी मान लेता तो मुझे शांति मिल जाती, मेरी जलन का कारण यही है कि वो मुझे दोषी भी तो नहीं मानता। अगर एक बार दोषी मान के मुझे भला बुरा कह देता तो मेरी आग ठंडी हो जाती, लेकिन अब इस आग को ठंडा करने का कोई उपाय नहीं है, पश्चाताप की आग। तो देखिए, अगर किसी से बदला ले लिया जाता है तो ना वो रियलाइज करता है, ना उसमें पश्चाताप पैदा होता है, और जब उसे माफ कर दिया जाता है, निर्दोष साबित कर दिया जाता है, तो अपने आप वो अपने दोष में डूबता रहता है, रियलाइज करता रहता है। बाबा के जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई। हमने एक साल माने इस जनवरी से पिछली जनवरी में मैगजीन में एक भाई का अनुभव डाला था, कुछ सिंधी भाई थे, जब बाबा सिंध में थे और जब ये मंडली शुरू हुई और बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया तो लोगों ने बहुत अपोजिशन की थी। तो एक भाई उस समय बड़ी छोटी आयु में था और वो अखबार में भी कुछ काम करता था और वो एंटी ओम मंडली का बड़ा सक्रिय सदस्य था। अखबार में बाबा के लिए उसने बहुत सारे विरोधी लेख लिखे, बाबा के घर के ऊपर पथराव करने में भी वो शामिल हुआ, बाबा की खिड़की के शीशे भी उसने तोड़े और जब पिकेटिंग हुई उसमें भी वो विरोधियों के साथ शामिल था और कई लोगों को वो अंदर भेजते थे, किसी बहाने से अंदर जाओ देखो दादा लखीराज क्या सिखाता है, इस तरह से माना वो विरोधी पार्टी का सक्रिय सदस्य था। उसके बाद 14 साल की तपस्या हुई और उसके बाद बाबा आबू में आए। 47 में जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे सिंधी लोग भी पाकिस्तान को छोड़ करके इंडिया में आए और ये जो गांधीधाम आदिपुर माने गुजरात का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ बहुत सारे लोग बस गए, तो वो बड़ौदा में आकर के बस गया। साकार बाबा के होते होते बड़ौदा में शाखा खुली, तब तक तो ब्रह्मा कुमारियों का नाम थोड़ा बहुत तो प्रचार में आ ही गया था और वो भी बड़ौदा की शाखा में आने लगा। अब तो उसकी उम्र बड़ी हो गई थी, थोड़ी समझ भी अनुभवी भी तो बनता है ना आदमी उम्र के साथ, और पार्टीशन के खूने नाहक खेल को भी उसने देख लिया था, अपना सब कुछ वहां गंवा के आए थे खाली हाथ, तो काफी बेचारे को दुखों का भी अनुभव हो गया था। तो जब बड़ौदा की शाखा में जाने लगा तो वो ज्ञान में चल पड़ा, ज्ञान में चल पड़ा माना उसे पता पड़ गया कि ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा के तन में भगवान आकर के सारा कार्य कर रहा, और उस समय तो लोगों को दादा लखीराज ही दिखाई देता था। ज्ञान में चला, अनुभव हुआ और यहाँ बाबा से मिलने आया। बाबा तो क्या करता था, जो भी बच्चा मिलने आता था, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ, बहुत प्यार करता था। तो उसने देखा बाबा मुझे कितना प्यार कर रहा है। हम सबने कहानियां सुनी है ना, साकार बाबा का प्यार कैसा था, पत्थर भी पानी बन जाए, पहाड़ भी पिघल जाए, ऐसा प्यार था। कितना निस्वार्थ और कितना अलौकिक प्यार था। तो जैसे बाबा ने सबको प्यार दिया, उसको भी उतना ही प्यार दिया। अब उसको लगा मैंने बाबा के लिए क्या क्या किया, वो सारा याद आ गया। मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, और इन हाथों से मैंने कितना पाप किया। लेकिन बाबा हैं कि प्यार ही प्यार दिए जा रहा है, एक बार भी पुरानी बात को याद नहीं करता है। बाबा के पास प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो बड़ा उसको पश्चाताप हुआ और उसने एक अनुभव लिखा कि जब मैं योग में बैठता हूं तो कभी कभी मेरी बाजुओं में बड़ी जलन होती है, मतलब एहसास होता है ये वही हाथ जिन्होंने बाबा के विरुद्ध लेख लिखे, भगवान से दुश्मनी ली नाथों ने, भगवान के विरुद्ध लेख लिखे, भगवान के लिए अपशब्द बोले हैं, भगवान के विरोध में कार्य किया, भगवान के कार्य में रूढ़े अटकाए, ये दोनों वही हाथ। मेरा मन करता है कि मैं दोनों हाथों को काट दूं, इनको देखने को भी मन नहीं करता, ये कैसे हाथ। इतना कई बार मुझे पश्चाताप होता। अगर मैं आबू में गया और बाबा मुझे थोड़ा बहुत भी कुछ कह देता ना, अच्छा बच्चे वहां तो तूने ऐसे किया, अब तो तू सुधर गया, तो भी मुझे शांति मिल जाती। लेकिन बाबा ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, प्यार ही प्यार किया, इसलिए मुझे ये अपने हाथ बहुत खराब लगते हैं। तो बाबा ने भी सदा ही क्षमा करने का रास्ता अपनाया। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में पार्ट ही ऐसा था आपका, बच्चे ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, तुम्हारा दोष नहीं है, यही कहता है ना। सारी बात ड्रामा पे टाल के या फिर माया पे, बच्चे तेरा दोष नहीं है, माया ही बड़ी जबरदस्त है, ये सब करवाती है। तो अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो क्या हम नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति दोषी नहीं है, इसके भीतर प्रवेश हुई माया दोषी है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। ये तो मेरा भाई है, जब हम परम धाम में थे तो इकट्ठे बैठे थे, आपस में बड़ा प्यार था, फिर जब सतयुग में आए थे तो भी प्यार था, त्रेता में थे तो भी प्यार था। ये प्यार कब टूटा, जब माया आई द्वापर से। तो वास्तव में प्यार तोड़ने वाली को न माया है ना, इसलिए माया खराब है। और सचमुच कोई भी व्यक्ति कुछ भी बुरा करता है तो किसी न किसी विकार के वशीभूति तो करता है ना, तो मारना तो उस विकार को है। आदमी को मार के, आदमी से नफरत करके क्या फायदा, उसका भी नुकसान हमारा भी नुकसान। एक बार अगर आप महात्मा गांधी की जीवन कहानी पढ़ें तो उन्होंने दो तीन जगह इस तरह की बातें लिखी हैं। एक तो जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, बहुत सारे निर्दोष हिंदुस्तानी मारे गए थे, कई लोगों को तो बहुत रोष आया था, जनरल डायर को मार दिया था उसी रोष में बदला लेने के लिए। लेकिन गांधी की प्रतिक्रिया तो हमेशा ही क्षमा की रहती थी, इसलिए लोग कई बार कहते थे भाई अक्षमा ही करते जाएंगे क्या, कितना अक्षमा करेंगे। तो गांधी ने अपनी जीवनी में स्टेटमेंट लिखी है कि वो व्यक्ति जिसने इतने हिंदुस्तानियों को मारा और वो मेरे सामने हो और मैं बेहोशी में हूं बेशक, और उसको अगर सांप काट जाए तो भी मैं यही कहूंगा कि ये ठीक हो जाए और इसका जो दर्द है वो मुझे मिल जाए, तो भी मैं यही कहूंगा। मना गांधी के मन में किसी के लिए कभी भी दुर्भावना या बददुआ थी ही नहीं। और दूसरा उन्होंने ये लिखा है, उनके आश्रमों में लिखा रहता है कि अगर मुझे कोई अपनी गोली का निशाना भी बना ले, मेरे ऊपर हिंसा का वार हो जाए, तो भी मैं चाहता हूं कि मेरे मुख से सिवाय राम शब्द के और कुछ भी ना निकले। ये पहले का अभ्यास उसने किया था। तो देखो, जब ऐसी घटना घटी तो मुख से क्या निकला? हे राम ही निकला ना, पहले से अभ्यास किया था। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं अंत में कर लेंगे, अंत मति सो गति की बात है ना, तो अपनी मति को अंत में अच्छा बना लेंगे। लेकिन अंत में अच्छी मति तभी बनेगी जब लंबे समय का अभ्यास होगा, नहीं तो नहीं बनती है। कई बच्चे कहते हैं हम पेपर में ठीक लिखेंगे, आप निश्चिंत रहो। जिसने अभ्यास किया ही नहीं लिखने का ठीक, और जब पेपर आता है तो लिख पाता है क्या? भूल जाता है सब कुछ। पेपर वही अच्छा देता है जो पेपर देने का कई बार अभ्यास कर चुका होता है। तो अंत में मति उसकी अच्छी रहती है जिसने लंबे समय से मति को अच्छा बनाया होता है। गीता में भगवान से अर्जुन ने पूछा, यही सवाल पूछा कि अंत गति अच्छी कैसे हो, तो बोला जो अंत में मेरा नाम ले ले। तो अर्जुन ने कहा ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, अंत में आपका नाम लेना क्या मुश्किल है, तो बहुत ही सरल काम है। तब भगवान ने कहा अर्जुन ये सरल नहीं है, अंत में मेरा नाम किसके मुख से निकलेगा? जिसने सारा जीवन मेरा नाम लिया होगा। और देखा है ना, लोगों को मूर्ति सामने रख देते हैं, गीता सुनाते हैं, लेकिन चित्त स्थिर नहीं होता है, इतनी परेशान हालत में होते हैं अंतिम घड़ियों में, अस्थिर, चिंतित, परेशान, पता नहीं क्या क्या उनके आगे नाचता है। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि लोग कहते हैं अंत समय में यमदूत आते हैं, काले काले होते हैं। तब बाबा ने कहा था अंत समय में जो किए हुए कर्म होते हैं ना, वही यमदूत बन करके आत्मा को सताते हैं, आत्मा के सामने प्रकट होते हैं। अच्छा, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, ये भी किया। वो भगवान याद नहीं आता है, अरे मैंने उसकी ऐसे उसके साथ ऐसे किया, वो सब कुछ याद आता है। औरंगजेब की कहानी अपनी एक साहित्य की किताब में जगदीश भाई ने लिखी हुई है, अविनाशी नाटक है, उसमें है थोड़े से पन्ने जिसमें औरंगजेब की कहानी, और औरंगजेब की कहानी उसके अपनी स्वयं की लिखी हुई है, उसको उन्होंने कोट किया है जगदीश भाई ने। तो उसमें भी दिखाते हैं, सबको मालूम है ना, जब उससे लोग कर माफ करवाने के लिए जाते थे उसके सामने, वो हाथी पे चढ़ के जाता था, लोग कहते थे साहब जजिया माफ कर दो, तो वो तो आते थे जैसे माफ करवाने के लिए, और कहते हैं वो चलता हुआ हाथी उस याचक के सिर पे अपना पांव रख देता था, इस तरह से पढ़ाया हुआ होगा ऐसा कुछ सुनाते हैं इतिहास में, मना हाथी के पांव के नीचे बहुत सारे कुचल करके मर जाते थे, चीखते रहते थे लोग और वो आगे बढ़ जाता था। ओम शांति। एक मिनट में अपनी बात पूरी करती हूँ, उसके बाद हम आधा घंटा योग करेंगे। तो उसने लिखा है कि अंतिम समय का अपना अनुभव लिखा है कि वो सब अत्याचार मुझे ऐसे लग रहे हैं कि मेरे ऊपर हो रहे हैं, जैसे मैं कुचला जा रहा हूं, मैं खुद कुचला जा रहा हूं। तो जो किया जाता है ना, फिर वैसी ही अनुभूति भी होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को कर्मों की गहन गति का ज्ञान दे करके ऐसे सब कर्मों से निवृत्त कर दिया, और ऐसा तरीका सिखा दिया कि जब कर्म कर रही हैं तब भी, और जब कर्म पूरा करके वापस जाने का समय आए तब भी हम सब आनंदमय स्थिति में हों। अभी आनंदमय स्थिति में होंगे तो अंत घड़ी में आनंदमय रहेंगे। तो अभी से हमको उस ब्लिसफुल स्थिति का अभ्यास करना है। ओम शांति।
जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा देखूं बस दिन रात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। दानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। कैसी चिंता कैसा गम हो देकर हाथ में हाथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। Oh, दया देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चल कर तुझ पर वारी जाऊं। और है क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चल कर तुझ पर वारी जाऊं। ये जीवन ये धड़कन बाबा अर्पण है सौगात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें।